الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
پروگرام روشنی لیے حاضر ہیں اللہ پاک نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری قبر اور آخرت کو روشن فرمائے اور اپنی زندگی میں اندھیروں کو دور کر کر ہم روشنیاں لانے میں کامیاب ہو جائیں اگر خود اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو ہمیں دوسروں کو روشنی دینے کی عادت رکھنی چاہیے جب آپ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلاتے ہیں تو اسے صرف آپ نہیں بچتے بلکہ آپ کے سامنے آنے والا بھی بچ جاتا ہے
زبردست
بعض اوقات موٹر سائیکل کار پر آگے پیچھے یعنی کہ یوں سے آگے کی لائٹ تو آپ کو راستہ دکھاتی لیکن پیچھے کی روشنی کس کو بتاتی ہے کیونکہ کوئی آپ کو نہ لگا دے تو روشنی سے نہ صرف ہماری بچت ہوتی ہے بلکہ ہمارے آس پاس دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے روشنی ہمیں حادثے سے بچاتی ہے اور دوسروں کو ہمارے ساتھ ٹکرانے سے بھی روشنی بچاتی ہے تو اپنی زندگی میں روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی زندگی میں اجالا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی اجالا ہو جائے گا
انشاءاللہ
کچھ لوگ اپنی زندگی میں اجالا اس طرح کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگی کو اندھیرے میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اجالا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا کسی کے گھر کو جلا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کی جا سکتی کہ اس کا گھر جلے گا اس آگ سے میرے گھر کی روشنی آئے گی نہیں اس کا گھر جلائیں گے تو کل اللہ نہ کرے ہمارا گھر بھی جل جائے گا تو پرام روشنی کی بنیادی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کی طرف غور کریں جو ہماری زندگی میں روشنی کا کام کرتے ہیں ہماری زندگیوں کو آسان کرتے ہیں ہمیں شکر گزاری کی طرف لاتے ہیں اور ہمیں ناشکری سے بچاتے ہیں صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد
اچھا جی نگرانی شورا ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ آ گیا ہے روشنی ہمارے پاس سیگمنٹ ہے مختلف اور ناظرین بھی ہوں گے کہ بھائی پروگرام وہی ہے آپ کا جانا پہچانا روشنی سیگمنٹ بھی وہی ہے ایکٹیویٹیز کچھ تبدیلی وغیرہ کرنے کی کوشش کی ہے جی ایف آر سی کی ہمارے پاس اسٹوری
ماشاءاللہ ایف آر سی یہ دعوت اسلامی کا ایک انتہائی اہم ترین شعبہ ہے فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جس میں مختلف بچوں کا علاج کیا جاتا ہے اور وہ آج ہمارے پاس اس کے لیے کیا اسٹوری ہے آئیے وہ آپ کو کچھ اسکرین پر دکھاتے ہیں انشاءاللہ
دلوں میں شمع حلم کی جلائیں گے یہ عزم ہے دلوں کو نور علم سے بسائیں گے
اسلام بھائیو یہ ایف آر سی جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یہ وہاں کے ہم نے آپ کو کچھ مناظر دکھائے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے بچے آتے ہیں اور ان کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ہفتے ان میں سے ایک ایسے بچے کو اپنے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل کریں کہ جن کے تعلق سے ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ الحمدللہ ایف آر سی میں جب سے وہ جانا شروع ہوئے ہیں ان کے بچوں کی तबीयत में, आदतों में, या जो इनका प्रॉब्लम था उसका हल होता हमें नज़र आ रहा होता है। और इसकी एक बुनियादी वजह ये रोशनी है, क्योंकि ये दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं कि जिनके लिए वालिदैन परेशान हैं और वो बड़े महंगे महंगे इलाज करा के भी इन्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क बाद जगहों पर नहीं पड़ता। क्या शिफा तो अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में बंदा कोशिश ही कर सकता है, लेकिन FRC दावत इस्लामी का चूँकि एक शोबा है और फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर बच्चों को रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, रिहेब किया जाता है, तो ये हम फॉर्म दिखाते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बच्चे या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं तो आप उनकी रहनुमाई कर सकें कि ये दावत इस्लामी के रिहेब सेंटर में जाएं और जाकर एक बार चेकअप करा लें, तो कोई इसमें इंशाल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खर्च नहीं होंगे और इनके सामने अल्लाह ने चाहते तो अच्छी सूरत हाल सामने आ जाएगी। अब जो बच्चा हमारे साथ है, अगर इसके ताल्लुक से कोई वीडियो है तो दिखा दें।
आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा।
मेरा नाम मोहम्मद साजिद, मेरे बेटे का नाम अहमद रजा। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो बचपन में तो बिल्कुल ठीक था, खेलना बातें करना सब कुछ ठीक था। उसके बाद हमें कुछ उसमें सिम्टम नज़र आने लगे, फिर हमने डॉक्टर से डिस्कस किया तो डॉक्टर को समझ नहीं आया, फिर हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया जो उन चीज़ों को एसिस करता था, तो उसने हमें बताया इस बारे में कि बच्चा जो है ऑटिस्टिक है। तो उसके बाद हम काफ़ी परेशान हुए, फिर हम एक जगह गए इसकी थेरापी कराने। वहाँ ये कि थेरापी तो बच्चे की चल रही थी लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा था वो हर लिहाज से, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद फिर हम जब हम फैजान रिहेब लेकर आए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उन्होंने बच्चों को ट्रीट किया, और थेरापी के हवाले से इनकी अलग अलग जैसे स्पीच थेरापी की प्रोफेशनल है इनके पास टीम है, और बिहेवियर की है, उसके अलावा OT की है, और इसके साथ साथ स्कूलिंग इनकी बहुत अच्छी है। साथ साथ इन्होंने स्कूलिंग शुरू करी हुई, तो उससे ये कि बच्चा हमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग इसके अंदर नज़र आ गई है। काफ़ी अच्छा है कि हमें रिस्पॉन्स मिला है एक साल के अंदर, और दूसरा है कि इनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और कोई यानी मुश्किल नहीं है। मैं खासकर दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने ये FRC का इदारा खोला, और ख़ासकर ये वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बिल्कुल और बहुत ही मुनासिब फीस रखी गई, क्योंकि किसी भी जगह आप चले जाए प्राइवेट में तो इतनी फीस हाई होती है कि वो कोई भी बंदा मिडिल क्लास तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो कीमत कम है, या इसकी जो फीस कम है, कीमत तो नहीं कहेंगे, फीस कम है, क्योंकि किसी को कंपनी तो बड़ी चलानी नहीं है ना। ऐसा है कि यहाँ से कोई 10-15-20 लाख रुपए महीना या 5-10-15-20 लाख रुपए महीना बचेगा तो ये बचकर हम मतलब कि कोई किसी का मतलब कि ऐसे इन्वेस्टमेंट है और उसका बिजनेस है, तो ऐसा है नहीं। ये डेफिनेटली हम कोशिश यही करते हैं कि कम अज़ कम इतनी हमें वो इसमें से अर्निंग हो जाए कि उस अर्निंग से हमारे ये रिहेब के जो एक्सपेंसिस हैं वो निकल जाएँ। और इसमें भी बाद अवकात ये होता है कि वो एक्सपेंसिस तो क्या निकलेंगे, बाद अवकात मुखय्यर इस्लामी भाइयों से बातचीत करके इसकी सब्सिडी की कोई सूरत बनाई जाती है। मकसद तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत का कोई बोझ हल्का करना, ये हमारा बेसिकली मकसद होता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में ये अमल कबूल हो जाए और अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मगफरत फरमा दे। आप भी हमारे पास स्टूडियो में अहमद रजा भी हैं और हमारे साथ स्टूडियो में साजिद भाई भी हैं जो इनके वाली साहब हैं, आइए इनके पास भी चलते हैं। पहले कुछ अहमद रजा से दो बातें करते हैं, पता नहीं अहमद रजा भाई हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मूड में हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद भाई कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह, तशरीफ रखें। ये है अहमद रजा, बात करते हैं अहमद रजा। अरे 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 घबराते क्यों बाबू, खराब तो नहीं बाबू?
नहीं
आप तो बच्चों को प्रणाम करते हो।
क्या क्या?
अरे ले लो यार, आइए पकड़ो, ये पकड़ो सीधे हाथ से, राइट है। बोलो क्या बोलते हो? नानी नाना? नहीं खाने का नहीं है, ये खाने का नहीं है, खाते वाते नहीं कुछ। हाँ अच्छा, अबू को बोला, अबू को बुलाते बाबा। अच्छा बोलो अल्लाह साज। अच्छा अहमद रजा, अरे अब खुद को देख रहे हो? अरे ऐसा तो नहीं करो यार, हमको देख लो ओ भैया। अरे 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 हमको तो देखो। अरे बोलो अल्लाह, अल्लाह
मान अल्लाह,
बोलो अल्लाह। अरे वाह देखो सब खुश हो रहे हैं, अरे खुश हो गए, बोलो अल्लाह। अहमद रजा अच्छा चले अभी वापस तो करो यार, ऐसा तो नहीं जो रख लिया। अरे नहीं ऐसा नहीं कर, नहीं ये तो हमारा है,
सुनाते नात वगैरह पढ़ते,
ये तो हमारा है,
ABCD पढ़ते हैं।
ये हमारा, ये हमारा है, ये माइक हमारा है भाई, ये माइक ही नहीं देगा, ये माइक हमारा है, नहीं देगा। आओ आओ चाहिए, इधर आओ,
आ जाइए, आगे की जानी भाई,
निकल लो, खुद ही निकल लो, इसकी मर्जी है, इसको जैसे आना आने दे। अच्छा चलो भाई, हाथ भी पकड़ लेते हैं अपना। अरे वाह, चलो आ जाए साजिद भाई, हैं चले, कहाँ जाना है? अच्छा ये देखो, ये कौन है, ये कौन है,
यहाँ से भी नजर आएंगे।
अहमद रजा, अरे अहमद रजा देखो, अभी अहमद रजा का, अरे ये अहमद रजा नजर आ रहा है। चलो हाँ, क्या कह रहे हो? अल्लाह 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 बोलो, अल्लाह। चलो अच्छा, किताब देखनी है, चले किताब देखें, चले
अपनी किताब दे, दे, कैमरे में नजर आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है, इससे भी खुशी हो रही है।
चले अहमद रजा आ गए, अहमद रजा कहाँ बैठेंगे? चले यहाँ बैठ गए, बैठ जाते हैं। साजिद भाई चले किताब तो दे दो हमें यार, ऐसा तो नहीं करो, अरे किताब तो दे दो, ऐसा तो नहीं करो, अरे यार दोस्त साजिद भाई, अरे क्या हो गया,
इसको गोद में लेके बैठे हैं, गोद में लेके बैठे हैं।
चले मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, ठीक है,
बहुत अच्छा हो गया।
अच्छा तो साजिद भाई क्या उम्र है?
5 साल होने वाले,
5 साल होने वाले। अच्छा इस, इनका बेसिकली प्रॉब्लम बोलने का,
बेसिक इनका स्पीच का प्रॉब्लम है और ये बिहेवियर प्रॉब्लम है।
अच्छा बिहेवियर प्रॉब्लम,
माइक करीब,
इनका हाइपर होना बहुत ज्यादा है।
तो ये आइए आइए लो, हाँ गुरु जी करंट लगाना, ऐसा मजा आया। तो सोने सोने का प्रॉब्लम है इनका?
सोने का नहीं है, सोने का ठीक है माशाल्लाह,
सोने का इनका प्रॉब्लम है। तो आपको क्या क्या बेहतरी लग रही है घर में? तो वैसे चीखना चिल्लाना मारधार करना?
नहीं मारधार करना तो नहीं है।
अच्छा
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि जैसे हम किसी भी इवेंट में चले जाए ना, तो वहाँ उसको बैठाना बहुत मुश्किल काम
होता है। यहाँ हो रहा है
जी, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र अभी भी बैठा हुआ है। उस वक्त तो हमें जैसे किसी शादी में चले जाए उसके साथ साथ हमें चलना पड़ता था, हम बैठ नहीं सकते थे। तो अब ये के काफी चेंज
पड़ा है,
हाँ उसके बाद हम कई इवेंट में गए और ये के काफी अच्छा रहता है हमारा, आराम से
बैठने का मौका मिल जाता है
जी,
समझने का मौका मिल जाता है
भी। और अब बात भी सुनते हैं, पहले हम कोई भी बात कहते थे ना, ये चीज लाओ यानी गेट बंद।
यार बापू बच्चा आपके स्टूडियो में बच्चा आया और काबू नहीं आ रहा बाबू, आपके होते हुए
ये वाला
यूसुफ बाबू है, ये तो साजिद, ये देखो कैमरा मैन है, इसको कैमरा मैन नहीं पकड़ पा रहा है, सैयद साहब आप क्या पकड़ोगे?
लोग देखने में कैसे ही चाहते।
अच्छा कैमरे पे भी सैयद साहब है, सूट दो तो सैयद आ गए, दो दो सैयद आ गए,
मजा आ रहा है।
खुली जगह कर रहे हैं मदी जगह नादरी, ये घर का एक अंदाज, ये समझे कि ये एक अंदाज होता है और माँ बाप की ये एक समझे की आजमाइश है, अल्लाह पाक का करम है कि कितनी बेहतरी आ गई है।
बहुत अच्छी बेहतरी आ गई है,
यानी बेहतरी से पहले फिर क्या आलम होगा?
उससे पहले तो ये था कि बिल्कुल चीखना चिल्लाना, कोई बात ना सुनना और कहीं भी सिटिंग ना करना, ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो उसमें काफी चेंजिंग आई है। और पहले ये था कि जैसे मोबाइल लो तो बच्चा छुपे, मोबाइल ले लिया तो फिर वो अपनी
अच्छा, ये भी मोबाइल वाला है?
हाँ मोबाइल वाला।
अच्छा ये भी कमाल है कि बच्चा मतलब जिस पोजीशन में भी है मोबाइल ने सबको काबू कर लिया है, एक ये समझने की बात।
आपके सामने ये बुक्स लेके खुश है, ये घर में भी बुक्स होती है तो अल्फाबेट की ABC सारी और काउंटिंग है 1 से लेके 100 तक, उसमें भी लगा रहता है, यानी कि स्कूल की जो एक्टिविटी है ना उससे काफी फर्क पड़ा है इसको।
कुछ ज्यादा सीखा है फारसी से और कुछ?
फारसी से ये है कि गैदरिंग करना थोड़ा सीख गया, पहले नहीं खेलता था बच्चों के साथ, अब बच्चों के साथ खेलना लगा है, ये बहुत अच्छा है।
मतलब सोशल एक्टिविटीज इसकी शुरू हो गई है। अच्छा इसको पहचानते हो?
ये क्या है?
ये खाने का है?
नाम लो उसका,
इसका नाम लो, क्या है
नाम बताओ?
क्या है? ये खाने का है? यकीन मानो खाने का।
चाली
चाली चाली।
चलो अच्छा ये खजूर खाते हो? खजूर खाते अहमद रजा ये लो नहीं भैया बच्चा है इसको इतनी तो समझ पड़ती है चॉकलेट ना खजूर में क्या फर्क है
ये
साजिद भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे शादो आबाद रखे अल्लाह पाक बच्चे को मजीद इसको और बेहतर करे और ये जैसे जैसे बड़ा होता रहे आपका सहारा बने आपकी आंखों की ठंडक बने और अल्लाह पाक आपको इसकी जो खिदमत हो रही है अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए हिम्मत से काम लीजिएगा सब्र कीजिएगा बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई अल्लाह पाक को खुश रखे माशाल्लाह पहले से ज़्यादा फ़र्क आ रहा है अल्लाह ने जा तो मजीद फ़र्क आता रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई को सैयद साहब कुछ देंगे आप
इंशाल्लाह आ जाओ
जब ये नाम रखने के हकाम मक्तदुल मदीना किताब है ये मक्तदुल मदीना से आप इतर हासिल कर सकते हैं माशाल्लाह और ये इंशाल्लाह जो खाए उसके लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बहुत बहुत शुक्रिया सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
अच्छा निगरान शुरा जैसे कि अभी एक स्टोरी देखी और ये बच्चा जो था ऐसे और भी वालदेन हैं कि जो कि परेशान हैं बच्चों की शरारतों की वजह से या बच्चे में ये है कि छोटी वो कुछ खराबी आ गई या खराबी की तरफ जा रहे हैं परेशान बहुत हैं ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें आज जो है ऐसे बच्चे हैं
अगर वो हमारे साथ सेट पे होना तो उनको बताएं कि
जी
परेशान करने वाले बच्चे कैसे होते हैं
जी
नहीं एक अब ये तो खैर एक मेडिकली अनफिट है ना
सही
मेडिकली अनफिट है और बाकायदा इनका एक ट्रीटमेंट चल रहा है
सही
तो अब ये जैसे कह रहे हैं कि एक साल पहले तो मामला ही इसका बिल्कुल अजीब था आज आपके सामने कि इसका इनका यहाँ ऐसा मामला है इतना बड़ा सेट है लोग बैठे हुए हैं ये घर पर इनका मामला कितना
ये बता रहे हैं अभी कम है ये
अजीब व गरीब होता होगा और फिर एक साल पहले जब इन्होंने FRC ज्वाइन नहीं किया था फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर उस वक्त बच्चे का आलम क्या होगा शुक्र का पहलू भी है कि बच्चा अभी चल फिर रहा है उसको उठाकर नहीं जाना पड़ रहा अल्लाह पाक की रहमत पे हाथ सर जो चीज़ें इनकी एबनॉर्मल हैं ठीक है उनकी नॉर्मलिटी की उम्मीद है बोलने की सलाहियत आ जाएगी जैसे बाज़ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी ही माजूर होते हैं और इनका उस माजूरी ख़त्म होने की कोई सूरत नहीं होती मिसाल के तौर पर हाथ नहीं है पाँव नहीं है अल्लाह ना करे नाबीना बच्चे पैदा हो जाते हैं इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हो जाती जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है कि इनकी वो चीज़ें रिकवर हो सकेंगी तो ऐसे बच्चों के जो जैसे अभी हमारे साथ ये अहमद रजा थे ऐसे बच्चों के वालिदैन के लिए होता है कि अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा माजूरी से बचाया भी हुआ है और जो चीज़ें इनके अंदर हैं इसके लिए बाकायदा इदारे बने हुए हैं जहाँ वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं ना बोलने वाले बन जाते हैं ना सुनने वाले बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो मतलब कि हाइपर होते हैं इनको बाकायदा कंट्रोल होना कंट्रोल करना आ जाता है और फिर बच्चों के साथ साथ वालिदैन का असर इसमें क्या होता है मैं ये बताऊं कि बसा औकात ये होता है कि बच्चे की जो थेरेपी चल रही होती है तो बच्चे की थेरेपी या बच्चे का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है इदारे के अंदर वो एक लिमिटेड ही होता है एक इनके सेशन होते हैं साजिद भाई यही है इनके सेशन होते हैं छोटे छोटे आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा ऐसा ही होता होगा
जाना है इनको
इनके सेशन होते हैं
जी
स्पीच का सेशन होता है
हाँ कितनी देर का होता है
आधे घंटे का
आधे घंटे का होता है हफ्ते में कितने दिन
सेशन होता है
हफ्ते में कितने दिन होता है
हफ्ते में एक एक सेशन होता है
हफ्ते में एक एक सेशन होता है
ठीक
है
एक वो भी थोड़ी
अब हफ्ते में एक सेशन हो रहा है थोड़ी देर का हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रीटमेंट है जैसे अमूमन वीकली मेडिकल चेकअप होता है लेकिन जो ज्यादातर जिम्मेदारी यहाँ जो बनती है ना वो पेरेंट्स की बन जाती है अच्छा सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बनती अच्छा पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट कहाँ होते हैं अब जैसे कि साजिद भाई कह रहे थे कि हम जब दावत में लेके जाते हैं और दावत में लेके जाएं अगर कोई खुली खुली जगह पर लेके जाएं तो फिर लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना ये ज्यादा डिसअपॉइंट कर देते हैं अब यार तुमसे बच्चा नहीं संभलता अब यार इस बच्चे को लाने की क्या जरूरत है तो इसमें माँ बाप की बहुत दिल आजारी होती है माँ बाप का दिल दुखता होगा यार और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए अगर ऐसे पेरेंट्स अपने किसी बच्चे को फैमिली गैदरिंग में लाते हैं क्लोज गैदरिंग है भाई का घर होता है बहन का घर होता है और ज्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं दावत होती है उसमें अगर ले आते हैं
उनके जहन में ये होता है कि माशाल्लाह बेहतरी आ रही है अब इसको लेके जाना चाहिए वो भी
उसको सोशलाइज करने की कोशिश करते हो सकता है डॉक्टर की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन हो कि इनको घर से निकाल कर आप दोस्तों में लेके जाएं फैमिली में लेके जाएं बच्चों में लेके जाएं ताकि बच्चा थोड़ा सोशलाइज हो जाएगा अब ये जब लेकर आए तो जो सोसाइटी के जो लोग हैं सोशल जो वो इसको बर्दाश्त नहीं करते टॉलरेंट नहीं करते हालांकि होना ये चाहिए कि वो वालिदैन को तसल्ली दें वालिदैन को मतलब के इसमें सब्र की तलकीन करें और वालिदैन को वैसे सब्र करना चाहिए। और माँ बाप अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं, आप ये देखिए कि इतना छोटा सा बच्चे को माँ बाप किस तरह कोशिशें कर 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 उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं ताकि ये बच्चा हमारा नॉर्मल हो जाए और अपने पाँव पर खड़ा हो जाए और अपनी मदद आपके तहत ही अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। इस प्रोग्राम को या इस सेगमेंट को दिखाने में एक हमारा जो पर्पस बनता है वो बनता है माँ बाप की कदर और माँ बाप की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह लाखों लाख बच्चे दुनिया में हैं, अगर इससे ज़्यादा हों तो भी मैं कुछ कह नहीं सकता, दुनिया में है। माँ बाप इनका गला नहीं दबा देते, माँ बाप इनको छुआ पे कौन इलाज कराएगा, छोड़ो मकरूज हो जाते हैं माँ बाप। जी हाँ, माँ बाप मकरूज हो जाते हैं, कर्जा ले लेकर इलाज कराते हैं। बच्चों का ऑपरेशन करना होता है, माँ बाप के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, माँ के जेवरात बिक गए, बाप का मतलब कि जो बच्चा कुछ सरमाया था वो बिक गया। अब बाप सिर्फ अपने बच्चों के ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, इंजेक्शन के लिए कर्जे पर कर्जे ले रहे होते हैं। और यही बच्चे जब सेहतमंद होकर बड़े होते हैं तो कहते हैं आज तक आपने हमारे लिए क्या किया है। अरे माँ बाप बेहोश ना हो जाएं, ऐसे भी मतलब के कहते हैं कि नाफरमान और बेजमीर किस्म की औलाद माशरे में पाई जाती है। तो ये आप देखिए, इस तरह कई वालिदैन हैं, लाखों वालिदैन हैं जो अपने इस तरह के बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये किसी सूरत एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। और फिर भी अगर नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आते तो जब तक माँ बाप जिंदा हैं अपने बच्चों की कुछ ना कुछ ये कोशिश करते रहते हैं कि माँ बाप में बच्चों में फ़र्क पड़ जाए। तो ये मैंने कहा चलें, एक ये पहला सेगमेंट था हमारा FRC के मुतालिक होता है। अल्लाह पाक सब पर करम फरमाए, सब्र भी अता करे और इसमें जो शुक्र के पहलू हैं अल्लाह पाक शुक्र इख्तियार करने की भी तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला
प्रोग्राम रोशनी। और इस प्रोग्राम में निगरानी शुरू की, जैसे अभी आपने गुफ्तगू सुनी, हौसला अफजाई, हौसला देने वाली गुफ्तगू, एक जोड़ने नहीं आपने जो है वो जोड़ने वाली बातें कि किस तरीके से हम हौसला दे सकते हैं वो वालदैन और वो सरपरस्त जो अतराफ के लोग हैं वो किस तरह अल्फाज के अदा करें। बात दफा तो बातें करना नहीं आती। आप हमारा प्रोग्राम देखें, निगरानी शुरू का प्रोग्राम देखें रोशनी, इंशाल्लाह ताला बातें करने आएंगी, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना आएगी। और भी हमारे पास सेगमेंट हैं, अब कुछ आगे की जानी बढ़ेंगे। हाजिरीन भी तैयार हैं, कैसे हैं भाई आप लोग? माशाल्लाह।
अच्छा, इनसे सवाल किए जाएंगे।
निगरानी शुरू आई है माशाल्लाह, कुछ हमारे पास नाइट जामियतुल मदीना के भी इस्लामी भाई हैं और एक अच्छी कारकर्दगी है और तोहफे ताए भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के दरमियान तकसीम किए जाएंगे
माशाल्लाह।
और अब देखें किससे क्या बातचीत होती है।
एक और हमारे साथ माशाल्लाह इस्लामी भाई होते हैं हमारे साथ इस वक्त हैं, मोहम्मद कैस अत्तारी।
माशाल्लाह
मोहम्मद कैस अत्तारी माशाल्लाह ये हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं कैस भाई। अच्छा, एक और हमारे साथ है महमूद, माशाल्लाह महमूद अत्तारी आप भी हैं। और एक और हमारे साथ इस्लाम भाई है अब्दुल मुईज अत्तारी, माशाल्लाह अब्दुल मुईज मुगल। और एक हमारे साथ इस्लाम भाई मौजूद हैं स्टूडियो में, खुर्शीद अहमद अत्तारी माशाल्लाह। और एक है मोहम्मद अकील नियाजी माशाल्लाह, और मोहम्मद फिरोज सिद्दीकी ये भी हैं, और एक हैं खुर्शीद अहमद अत्तारी माशाल्लाह। चले जरा माइक दे तो जी। अच्छा, अब ये कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। दावत इस्लामी के तहत चलते हैं नाइट जामियतुल मदीना। नाइट जामियतुल मदीना से मुराद वैसे तो जामियतुल मदीना जिसमें दरसे निज़ामी करवाया जाता है, आलिम कोर्स करवाया जाता है, ये बेसिकली तो दिन के होते हैं यानी सुबह से लेकर दोपहर तक के। लेकिन कुछ ऐसी प्रोफेशनल या ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड बंदों की बात आशिका रसूल की जिंदगी का अंदाज होता है कि वो जज्बा तो रखते हैं कि हम आलिम दीन बने और इल्म दीन हासिल करें, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं बन पाता। तो दावत इस्लामी ने इनको मौका दिया कि आप नाइट जामियतुल मदीना में पढ़ लें, फिजिकल पढ़ लें। तो माशाल्लाह अभी हमने जिन्हें अपने स्टूडियो में जहमत दी है इसमें, अगर मोहम्मद ये आप अगर इस्लामी भाई थोड़े खड़े हो जाएँ और ताकि मदनी चैनल के नाजरीन आप सबको देख सकें
माशाल्लाह,
ताकि कैस मोहम्मद कैस अत्तारी आपकी, अच्छा ये माइक आप आगे बढ़ाते रहिएगा ठीक है। इसमें आपकी तालीम कितनी है?
मेरी दुनियावी तालीम जो अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मुकम्मल हो गई, बीकॉम कंटिन्यू है।
बीकॉम में आप हैं, अच्छा, और कौन से उसमें पहुंचे?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेट जामियतुल मदीना कंजुली बान के तालिबे इल्म दर्जे साबियानी सातवें दर्जे का,
सेवंथ दर्जे में आप, ठीक है। और कामकाज भी करते हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिन में सेल मैनिंग का काम करता हूँ अपना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा,
इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमामत भी करता हूँ।
अच्छा, इमामत भी कर रहे हैं?
क्या बात कर रहा हूँ,
क्या बात है। आपका नाम?
खुज़ैम अहमद अत्तारी। खुज़ैम अहमद अत्तारी।
माशाल्लाह, आप कुछ अपने बारे में बताएंगे?
जी मैं भी नाइट जामतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान में पढ़ाई कर रहा हूँ, दर्जा साबिया में, सेवन्थ ईयर में।
सेवन्थ ईयर में
जी अल्हम्दुलिल्लाह।
और इसके अलावा?
इसके अलावा बिजनेस है अपना प्रिंटिंग सर्विसेज का, और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी काम करता हूँ मैं।
अच्छा, ये भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी जारी है?
और पढ़ाई बस पढ़ाई इंटरमीडिएट तक की है,
मगर अब ये दरस निज़ामी है
निजामी
और दीगर आपकी जो अर्निंग एक्टिविटीज दीगर जो है प्रोफेशनल एक्टिविटीज आपने जारी रखी
है। बिल्कुल,
आप बताइए।
जी मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमफिल अपना कंप्लीट किया लास्ट ईयर, और अभी नाइट जामतुल मदीना कंजुल ईमान में दर्जा साबिया का तालिबे इल्म हूं।
दर्जा साबिया?
सातवां दर्जा।
सेवन्थ?
जी।
अच्छा ठीक है।
और
खुर्शीद भाई बताएं।
खुर्शीद अहमद अत्तारी, औरंगी टाउन से मेरा ताल्लुक है। मदरसतुल मदीना बालिगान में जो मार्केट वाले हैं उसमें तदरीस करता हूँ, और रात को जामियतुल मदीना में दर्जा साबिया में,
सेवन्थ में।
जी सेवन्थ के अंदर दर्स निज़ामी का सिलसिला।
उम्र कितनी है आपकी?
61 साल।
61?
जी।
चलिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। आप बताइए।
मोहम्मद फिरोज सिद्दीकी, जामियतुल मदीना में सेवन्थ ईयर का तालिब इल्म हूँ। इसके अलावा मैंने BSc की इक्विवेलेंस डिप्लोमास किए हुए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, और लेबोरेटरी में टेक्सटाइल लेबोरेटरी में एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने फराइज सर अंजाम देता हूँ।
दिन भर इसी तरह की मसरूफियत रहती है, रात को पढ़ने जाते
हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन में शाम के टाइम पे होम ट्यूशन का भी सिलसिला होता है।
अच्छा, वो भी करते हैं। आप बताइए।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
महमूद अत्तारी, पहले इंजीनियरिंग में था साइंस में, फिर मैंने कॉमर्स की तरफ आ गया, तो ICA में मैं दुनियावी तालीम में था, फिर मुफ्ती दाऊद साहब को देखते हुए दीनी शौक पैदा हुआ, तो दर्स निज़ामी में एडमिशन ले लिया, तो पढ़ते गए तो छोड़ते गए, दोबारा पढ़ते गए, फिर फाइनेंस में मास्टर्स कर लिया, तो दुनियावी इल्म भी मास्टर्स है, और दीनी इल्म में भी दर्स निज़ामी मैंने 4 साल किया हुआ है। अब जामतुल मदीना नाइट में कंजुल ईमान में चराबिया में
मेरा नाम मोहम्मद अकील नियाजी है, और मैंने दुनियावी तालीम के लिहाज से BCom किया है, उसके बाद मैंने MCom किया है, उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है, उसके बाद मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया है, उसके बाद मैंने MA इस्लामिक हिस्ट्री किया है, उसके अलावा ICMA
और इसके MA कुछ बचता है
अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा, बहुत MA, अच्छा ठीक।
उसके अलावा ICMA के तकरीबन मैंने 80% जी CMA के तकरीबन 80%
पेपर
जी इंस्टीट्यूट ICMA की डिग्री। उसके अलावा गवर्नमेंट का 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ मैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑडिट सिंध डिपार्टमेंट में जॉब
करने के बाद दर्स निज़ामी
ये सारी चीज़ें, मतलब इल्म हासिल करने का शौक अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से था, और सबसे ज़्यादा बचपन से ही शौक था कि दीन का इल्म हासिल करूं। और इसी वजह से मैंने क्या किया कि मैं काफ़ी मदारिस में गया सुबह। अब मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, वो लग चुकी थी तकरीबन 2002 में ही। जिस मदरसे में भी जाता था वो यही कहते थे कि भाई आपको जो है आप
कंजुल ईमान मदरसे में,
जी कंजुल जामतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान नाइट में ज़ेर तालीम हूँ, और दर्जा राबिया में हूँ,
फोर्थ में है।
जी फोर्थ ईयर में। और मेरी ये ख्वाहिश दावत इस्लामी की बदौलत पूरी हुई कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं दर्स निज़ामी करूँ, लेकिन मॉर्निंग के जितने भी मदरसे हैं उसके
रात में बन गई जगह आपकी।
जी बिल्कुल,
बन गया। 4 साल बाकी है, कितने साल बाकी हैं?
4 साल बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
4 साल बाकी,
4th साल में पढ़ रहा हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह,
दावत इस्लामी ने मेरी ये दिली ख्वाहिश पूरी करी।
आप दावत इस्लामी की कौन कौन सी ख्वाहिशें पूरी करेंगे?
इंशाल्लाह जल्द दीन की खिदमत का काम करने हैं मरते दम तक।
12 माह देंगे
इंशाल्लाह,
अभी देंगे दर्स निज़ामी के बाद देंगे?
अभी तो तालीम का सिलसिला है, हमारे असातिज़ा भी कहते हैं कि सबसे पहले आप तालीम पे तवज्जो दें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह।
असातिज़ा को कहें मदनी मुज़ाकरा भी देंगे, हम इसे फरमाते दौरान तालीम 12 माह दे देने चाहिए। ठीक है,
एक ही
तशरीफ रखें माशाल्लाह,
एक रह गए।
अच्छा आप भी रहे, आप बताइए हुजूर, आप कहाँ से?
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नाइट जामतुल मदीना फैज़ान कंजुल ईमान का तालिबे इल्म हूँ, 7वें दर्जे का, और जो है मेरी दुनियावी तालीम MA है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं سوئی سدرن گیس کمپنی میں ایز اے اے سی سپروائزر کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دن میں کام کرتا ہوں, شام میں الحمدللہ تعلیم ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میرے تمام ہی بچے دعوت اسلامی میں, ایک الحمدللہ تخصص میں ہیں, تخصص کے سالے دو ایم میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کرنگی میں, اور ایک جو ہے نا تدریس کر رہے ہیں.
کیا بات ہے مدینے کی. جیسے اب خورشید بھائی ماشاء اللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ پڑھاتے رات کو, تو آپ جیسے کوئی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اگر مصروفیت اگر آپ لے لیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی مصروفیت کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں, الحمدللہ ایک پبلکلی بات چیت کرنے اور پبلک میں رہنے اور پبلک کے مسائل کو سمجھنے اور پبلک کی اور عام لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو مواقع دعوت اسلامی کے یہ جو بارہ دینی کام اور دیگر مصروفیت دیتی ہے اس کا ایک اپنا فائدہ ہوتا ہے. تاکہ جو ہم علم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ کہیں بھی جائیں گے کسی سے ملیں گے تو دربہ ان کو سکھائیں گے نہیں آپ, ٹھیک ہے نا, نہ حرف جر کی ان کو آپ مطلب کہ تعلیم دیں گے, نہ ان کو مضاف مضافلے سکھا سکیں گے, نہ مستد مستد علیہ کی ان کو درس دے سکیں گے. ایک عام آدمی کو کیا بات بتانی ہوتی ہے, سکھانی ہوتی ہے, ان کے کیا کیا جنرل بیسیکلی ایشوز ہوتے ہیں, وہ ہم پبلک میں رہ کر کرتے ہیں. تو کوئی تدریسی زندگی الگ ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل پبلک لائف الگ ہوتی ہے, اور ان کی رہنمائی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جو دعوت اسلامی کے جو بارہ دینی کام ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں آنا لانا, اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنا, مدرسۃ المدینہ بالیگان پڑھنا پڑھانا, الحمدللہ اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, مثالی ہوتے ہیں, اور ہمیں ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مدنی جائے کے ناظرین, ماشاءاللہ ہم نے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اسلامی بھائیوں کا آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے, اور آٹھوں اسلامی بھائیوں کا تعارف اس انداز پر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ آٹھوں کے آٹھوں اپنی زندگی کا ایک ان کی لائف بھی ہے, پروفیشنل بھی ہیں, ایک پریکٹیکل لائف ہے, کچھ پڑھ بھی رہے ہیں, کچھ جاب کر رہے ہیں, کچھ ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, کچھ اس سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, اس سے کم کیے ہوئے ہیں, کسی کی ایج 61 ہے, کسی کی ایج 50 پلس ہے, کوئی ینگ ہے تو کوئی بڑھاپے کی منزل وہ پاؤں رکھ چکا ہے اور آگے کا سفر ابھی جاری ہے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے, علم نافع عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان کی تعلیم کو ان کی پڑھائی کو پورا کرنا نصیب فرمائے, اور مبلغ دعوت اسلامی بن کر اللہ کرے مفتی اسلام بن کر یہ دین کی خدمت بھی کریں, اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہے, ان کے والدین ان کے سپورٹ کرنے والوں کو اللہ پاک مزید برکت سلامت رکھے. یہ بات جو آپ کو ہم آج روشنی پروگرام میں بتاتے ہیں, یہ ایک روشنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین میں وقت نہیں ملتا, ہمیں دوپہر کو وقت نہیں ملتا. رات میں کتنے گھنٹے کی کلاس ہے؟ 3 گھنٹے کی. رات میں 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور رات 3 گھنٹے نکال لیتے ہیں, 9 بجے آپ پڑھنے جاتے ہیں, 9:30 بجے پڑھنے جاتے ہیں, 12:30 بجے تک ان کی پڑھائی چلتی ہے, اس کے بعد یہ گھر جاتے ہوں گے, اس کے بعد یہ سوتے ہوں گے, فجر کی نماز پڑھ کر پھر تھوڑا اور آرام کر لیتے ہوں گے, ناشتہ واشتہ تو کرتے ہی ہوں گے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپنے کام کاج پر, جو آپ نے ابھی ان کی زبانی سنا, یہ جاتے ہوں گے. پورا دن کام کاج کرنے کے بعد بندہ تھکتا بھی ہے, اور تھک کر پھر دوبارہ اپنے آپ کو پڑھائی کے لیے تیار کرتا ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ لائف ہے, بڑی کمپریہنسو قسم کی زندگی ہے, اور ایسی زندگی جو اتنی فضولیات والی زندگی جو لوگ گزار رہے ہوتے ہیں, اس سے نکل کر یہ آتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بات ماننے جیسی ہے. ہر کوئی کہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, بات ماننے جیسی نہیں ہوتی, کہ جن کے پاس بالکل کٹ ٹو کٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا, ان کی تو بس بھی لیٹ ہو جائے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی کہ یار اب پہنچیں گے کیسے. تو آدھے آدھے ایک ایک گھنٹے کا ڈیوریشن کے ساتھ جو چلتی ہے زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہے. یہ کہہ دوں کہ یہ کوئی 1 سال کی 2 سال کی یا 5 مہینے کا یہ روٹین نہیں ہے, یہ 8 سال کی روٹین ہے. 8 سال تک 7th ایئر میں ہیں آپ میں سے کئی, وجہ کہ آپ کا یہ 7واں سال چل رہا ہے, 6 سال آپ نے اسی طرح گزار دیے. اللہ نے چاہ تو یہ بھی مکمل ہو جائے گا. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو اس طرح کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں, آئیے. اور نائٹ جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے ہیں لاہور میں, وہاں بھی نائٹ جامعۃ المدینہ ہے, وہاں تقریباً 150-200 پروفیشنلز جمع تھے. ان کو بھی یہی ترغیب دلائی گئی تھی کہ آپ کو ہمت کریں, درس نظامی کریں, علم دین کا نور ملے گا, انشاءاللہ زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ. کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کی معیشت میں برکت عطا فرما دیتا ہے, اور جو علم دین حاصل کرتا رہتا ہے اور اس راستے پہ چلتا رہتا ہے اللہ پاک اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے.
سبحان اللہ,
گھر میں برکت, کاروبار میں برکت, روزگار میں برکت, مطلب بالکل اپنے وجود کے اندر ہم برکت محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی یہی ترغیب دلاؤں گا, اگر شادی شدہ ہیں تو بچوں کی امی یا بیوی جو ہے وہ ترغیب دلائے, آپ بھی جائیے درس نظامی کیجئے. اب کچھ نہیں کر سکتے فزیکلی, آن لائن کر لیجئے. درس نظامی نہیں کر سکتے تو فقہ کورس کر لیجئے, بہت سارے کورسز وہ کر لیجئے. خود کو علم دین حاصل کرنے میں مصروف رکھیے. اس پرفتن دور میں خوش نصیب ہے وہ شخص جو صحیح طور پر صحیح پلیٹ فارم پر آ کر علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ان آٹھ اسلامی بھائیوں کو کچھ تحائف دیے جائیں, ان کو تحفے دیے جائیں. ماشاءاللہ, اعلی حضرت سے سوال جواب, آخری نبی کی پیاری سیرت. عرض ہے کہ اس کو جلد جلدی پڑھنے کی نیت رکھیے گا. اعلیٰ حضرت سوال جواب. خورشید بھائی آپ کو گھریلو علاج ہی لے جائیں. ماشاء اللہ, آپ تکلیف نہ دیجئے, کتاب کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ راہ عیل بہت پیاری کتاب ہے, راہ عیل عظیم الشان کتاب ہے.
ایک کتاب,
ایک اور کتاب, اور ایک کتاب اور دے دیجئے. ماشاء اللہ, اچھا ان کو بھی گھریلو علاج دیں, آپ بھی گھریلو علاج لے جائیں. یہ لگتا ہے کہ عمر دیکھ کر دے رہے ہیں. ماشاء اللہ, اچھا مسواک کے بھی تحفے میں دینی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فیضان مسواک, فیضان مسواک, جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کی رضا ملتی ہے مسواک کرنے والوں کو. سنت پر عمل کرنے کی نیت سے مسواک کیجئے, انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہیں اور وہ کچھ تیاری سے آئے ہیں, کچھ تیاری وغیرہ سجی ہوئی ہے اور
جی
بنائیں گے بھی اور کچھ دکھائیں گے بھی.
کیا
جی کچھ دکھائیں گے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ.
پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چاہ کے ناظرین, ہم اس سے پہلے کہ اپنے ایک اسلامی بھائی کی طرف جائیں, یہ بھی ہم اپنا ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں روشنی پروگرام میں. اور یہ کیوں رکھتے ہیں اور اب تک ہم کیا کیا کرتے آ رہے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اندر, اپنے پروگرام کے اندر, آئیے اس کا ایک آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں, پچھلی جھلکیاں.
معذور ہوں مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں, محتاج نہ ہو میرے رب کسی کی, تجھ سے بندھی سب ہو امید میری.
مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک, دو بچے چھوٹے چھوٹے, اس کے مکان بھی کرائے گا, دکان بھی کرائے گی, ہر کام جانتا ہے, کوئی بھیک وغیرہ نہیں مانگتا. مسئلہ یہ کہ معذور اس کے ہاتھوں میں رش ہے.
موبائل ایپس وغیرہ کے حوالے سے بھی سکھاتا ہوں تاکہ ہمارے جو بلائنڈ پرسن ہیں وہ بھی, کیا نام ہے, موبائل کی جو ایسیسیبل ایپس وغیرہ ہیں وہ بھی یوز کریں.
نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی.
الحمدللہ ابھی میں خود سے آتا ہوں فیضان ریبلیٹیشن میں, تو انہوں نے مجھے بہت اچھا ہوم پلان دیا جس کو فالو کرتے ہوئے آج میرے بولنے میں اور میری اسپیچ میں, میرے چلنے میں کافی حد تک بہتری محسوس ہوئی ہے.
اس سے میں بلائنڈ ادارے میں ایک کمپیوٹر پڑھاتا ہوں, ایم ایس آفس ہو گیا بیسک میں ہمارا, کمپیوٹر کی سیٹنگ کرنا, اسپیشل بچوں, نابینا بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں.
مجبور نہیں, معذور ہوں مجبور نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا کہ پچھلے روشنی پروگرام میں ہم نے اس طرح کی کچھ چیزیں اسلامی بھائیوں کو ہم نے دعوت دی, اور جو ان کے پروفیشنز تھے, جو ان کے کام تھے, جنہوں نے خودداری کی زندگی اختیار کی تھی, وہ ہم آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اپنے ہر روشنی پروگرام میں. اس کے پیچھے ڈیفینیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی کسی نہ کسی معذوری کو اپنی مجبوری بنا کر لوگوں پر ڈیپینڈیبل ہو جاتے ہیں, بلکہ معاذ اللہ بھیک تک مانگتے ہیں اور پروفیشنل بھکاری بن جاتے ہیں, اور بڑی عجیب و غریب ان کی زندگی ہو جاتی ہے. اب ان کے لیے خاص طور پر کہ آپ اپنی اس کمزوری کو مجبوری بنانے کے بجائے اپنی کمزوری کو اپنے لیے طاقت بنائیں, اس کمزوری کو سامنے رکھ کر آپ اپنے لیے کچھ چیزیں سیکھیں. اور اس میں خاص طور پر ہم ان جس کو کہتے ہیں نا اٹے گٹے بالکل نوجوان جو بالکل پڑے رہتے ہیں, کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بھائی یہ کر رہے ہیں, کوئی پنچر بنا رہا ہے, کوئی ٹائر کا کام کر رہا ہے, کوئی الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے, کوئی سافٹ ویئر پہ کام کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی ٹیلر مسٹ کوئی مطلب ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں, کوئی اور کا کام کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوشش کریں تو اپنے ہاتھوں کی کمائی, اور حدیث پاک موجود ہے کہ بہترین کمائی وہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو.
سبحان اللہ.
تو یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں, اس کے حلال کماتے ہیں, اور لوگ ان کو عزت کی نظر دیکھتے ہیں محلے میں, علاقے میں, معاشرے میں, فیملی میں, خاندان میں, لوگوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, تو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مطلب کہ اس صورت حال میں بھی یہ اپنے کہتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے مگر یہ پاؤں پر کھڑے ہیں, اور جو پاؤں پر کھڑے ہیں حقیقت میں ایسے کئی جو پاؤں پر نہیں کھڑے. یہ بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کئی ایسے ہمارے سامنے آئے جو اپنے جو پاؤں پر کھڑے رہنے کی بظاہر طاقت نہیں رکھتے مگر اللہ پاک نے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے,
گھر بار چلا رہے ہیں,
گھر بار چلا رہے ہیں, شادی شدہ ہے, میرڈ لائف ہے, بچے ہیں, بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ان میں سے کئی ایسے جن کے بچے نارمل ہیں, یہ بچے جب اپنے باپ کو دیکھیں گے بڑے ہو کے کہیں گے ہمیں اپنے والد جیسا مطلب کہ وہ ان سے زیادہ موٹیویشن دینے والا ہمیں کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے والد صاحب ہمارے مینٹور ہیں, انہوں نے اتنی مجبوری کی زندگی میں ہمیں پالا پوسا اور بڑا کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ایسے ہی ایک اور اسلام بھائی کی طرف جائیں گے مگر اس سے پہلے لیتے ہیں آپ کی کچھ کالس. آمین آمین. جی ایک اور کال دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. جی ایک اور کال دیجیے.
میرا نام وشیرا تاریخ میں ملتان سے بول رہا ہوں. گرانے شورا مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو کلام سناؤں گا. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. دعوت اسلامی زندہ باد.
ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد. ایک اور کال دے دیں.
نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو سگریٹ زیادہ پیتے ہیں انہیں اس سگریٹ پینے سے روکا جاتا ہے کہ خود تو پھیپھڑے خراب کر رہا ہے, دھوئیں سے جو ساتھ ہے دھوئیں سے اس کے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ روکتا ہے تو جو نہیں پیتا پینے والے کو روکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا. اس بارے میں کچھ مت نہیں پھول اور شاید علماء کہ انہیں کس انداز میں سمجھا کر سگریٹ سے ہٹایا جائے.
ان کے سوال پر ہی جواب دے دیں. وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا, اس کو پروف کرے کہ پیے گا تو مر جائے گا. بھیا نہ پینے والے تھوڑی کوئی یوں مر جاتے ہیں. اس کے پینے والے کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ پیو گے تو مر جاؤ گے, کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور یہ موت کا سبب بن جاتا ہے سگریٹ نوشی یا جو اسموکنگ ہوتی ہے. تو یہ بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے, ابھی ان کے لیے دعا کریں. پیسہ بھی برباد کرتے ہیں, صحت بھی برباد کرتے ہیں, ماحول بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے تو ایئرپورٹ پہ بھی الگ کیبن بنائی جاتی ہے, کئی اچھی جگہ پر جائیں نا تو ان کے لیے الگ سے کیبن ہوتی ہے کہ سگریٹ پینی ہے اندر چلے جاؤ, آپ کو یہ سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے. انہیں کے لیے جہاز میں اعلان ہوتا ہے اسموکنگ آر ناٹ الاؤڈ. پھر ان کے لیے ایک اور اعلان ہوتا ہے باتھ روم میں بھی مت پیتیے گا, وہاں بھی ہمارے وہ لگے ہوئے سینسر لگے ہوئے ہیں, باتھ روم میں بھی ہوگا تو پکڑ لیں گے اور یہ آپ کے لیے سزا ہو جائے گی. اور یہ اتنا نہیں سمجھتے کہ ہم کو کتنا مطلب کہ کتنی جگہ پہ ہم کو روکا جاتا ہے. خبردار ہے کہ جہاں سگریٹ بھی بورڈ انہیں کے لیے لگاتے ہیں, نو اسموکنگ ایریا, نو اسموکنگ ایریا, نو اسموکنگ ایریا. اسموکر
गो दिस साइड, आपके लिए हमने अलग केबिन बनाई है, सारे वहीं चले जाते हैं और वहां जाकर सारे बेचारे मतलब कि वो कुछ बेचारे होते हैं, कोई गैर बेचारे होते हैं, ये सिगरेट फूंक रहे होते हैं और एक दूसरे को बीमारियां मुंतकिल कर रहे होते हैं। ये सब पता है जो मैंने को
घर वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान,
नहीं बात तो की नहीं है मैंने घर में परेशान, भाई ये देख रहे होते हैं कि बाहर मतलब इनके लिए एरिया ही अलग है, इन्हीं के लिए बोर्ड लगा होता है नो स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, यानी कोई अच्छी आदत होती तो मना नहीं करते ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी आदत अच्छी नहीं है और आपकी आदत आपको किसी भी महजब और एक अहम दीनी, एक महजब दीनी के आगे आपको बैठने नहीं देती, क्योंकि आप पता है क्या इनके आगे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, आज भी शायद हो सकता है, मेरा गुमान है ऐसे, क्योंकि सब बद तहजीबी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने गुमान की बात की कि शायद हो सकता है कि आज भी ऐसे लोग होंगे कि जो अपने वालिदैन के आगे नहीं पी सकते होंगे, अच्छी आदत नहीं है तभी तो अब ये कर रहे हैं, बद तहजीबी इसलिए कि अब ये बचा कुचा जो माहौल था ये भी हमारा किसी हद तक रुख्सत हो चुका है कि अब मतलब कि ये मायूब नहीं रहा ये, हालांकि हमारे यहाँ सिगरेट पीना आज भी मायूब है, आज भी इसको अच्छी आदत नहीं समझा जाता, जो सिगरेट के आदि हैं वो किसी अच्छी रिस्पेक्टेबल उमदा माहौल में जाते हुए इनको भी झिझक होती है कि यार चलो 15-20 मिनट तो ठीक है, आधा घंटा सिगरेट पी
रहे हैं, परेशानी अलग
तो सिगरेट की वजह से इनके रोजे बिचार कई होकर रोजे सिर्फ सिगरेट की वजह से फर्स्ट रोजा ये छोड़ देते होंगे जो कि बिल्कुल गुनाह का काम है। अल्लाह पाक इस प्रॉब्लम से और इस आफत से सबकी हिफाजत फरमाए और जो पीते हैं अल्लाह पाक तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे, छोड़ दीजिए, ये आदत इख्तियार करने वाली नहीं है, ये आदत छोड़ने वाली है, अच्छी आदतें हमेशा रखी जाती हैं और बुरी आदतें छोड़ी जाती हैं, सिगरेट की आदत छोड़ने वाली आदत है, रखने वाली नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बच्चों की तरफ जाएं इससे पहले हम पहले चलते हैं हमारे उन स्पेशल जो हमारे इस्लामी भाई हैं उनका एक पैकेज भी तैयार है, आइए देखते हैं।
माजूर हूँ मजबूर नहीं, माजूर हूँ मजबूर नहीं।
मेरा नाम जो है मोहम्मद सोहेल अख्तर है और मैं कोरंगी के सेक्टर 48 डी न्यू नूरानी बस्ती से, हमारे घर के सामने जो है ताहिर भाई होते हैं जो बजाहिर जो है आंखों से नाबीना है लेकिन उन्होंने अपनी इन नाबीना आंखों से वो काम कर रहे हैं जिससे हर शख्स चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो वो मुतासिर हुआ है, नाबीना होने के बावजूद जो है मोटर बाइक का जो है काम करते हैं और पूरी गाड़ी जो है वो माशाल्लाह खोल के बना लेते हैं, यहाँ तक के अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ऐसी सलाहियत से नवाजा है, मोटरसाइकिल के औजार होते हैं उनको हाथ में लेके बता देते हैं कि 10 नंबर का है या 11 नंबर का है या 12 नंबर का है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहि सलातो सलाम के वसीले से इनमें वो सलाहियतें दी हैं जो एक आंखों वालों के पास मेरी नज़र में नहीं है।
मैं ताहिर भाई का भाई बात कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं उनको नजर नहीं आता है, बाइक का काम करते हैं सही करते हैं, ना भी नए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह, नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, तमाम भी आते जाते हैं माशाल्लाह, अच्छा भैया माशाल्लाह एक साथ रहते सही है माशाल्लाह, कोऑपरेट भी करते हैं हमारे साथ।
कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसे हैं आप?
शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये इब्तदा इनकी अच्छी है, ठीक हूँ ये ठीक हूँ नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, तो ये भी सिखा रहे हैं कि बंदे को हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। भाई आपके बारे में तो हमें ये बता रहे हैं वीडियो पर कि आपको तो समझ आ जाती है कि कौन सा पाना है किस नंबर का है, तो जरा बताएंगे जरा दिखाइए
भी दिखा दें
उठा के मैं। क्या है? चलो नहीं नहीं आप क्यों दे रहे हैं खुद खुद आप दिखाइए
कोई भी चीज उठा के मेरे को दें मैं बता दूं,
हम क्यों उठा के दें आप क्यों उठा लें,
ये 16-17 का रिंग पान है,
एक में सफर तो करें हमको देखने भी दो बापू
मेरे वहीं रह गए जरा 16-17 देखो आइए दिखाइए अगर करीब करके दिखा सकते हैं
अब आप बता दो आप पर भरोसा है
16
चलिए 16-17 सही हो गया और दिखाइए
ये पेचकस है
ये पेचकस है
तो
बाबू पेचकस है ये
दिखावा इसके ऊपर
नहीं नहीं दिखावा नहीं होगा नजर आ रहा बाबू इतना ये घर में जब बंदा इस्तेमाल करता है ना तो समझ पड़ जाती है पेचकस बोलते हैं
दिखावा नंबर
ये 2-in-1 पेचकस ये भी बता रहे
हैं एक मुंह का है यहाँ से 4 मुंह का है
ये माशाल्लाह जवाब दुरुस्त है
माशाल्लाह
चलें और बताइए
ये स्क्रू पाना है छोटा
ठीक है
चार मुंह की टामी
ठीक है
और ये है अगली की ब्रेक की केबल जो बाइक चलाते हैं उनको पता होगा अगली ब्रेक के क्या भी
अगला ब्रेक हमारे होता ही नहीं है, पिछला ब्रेक सही नहीं लगा,
ये वाला
ब्रेक कहाँ से रखें,
ये वाला कौन सा पाना है,
ये पाना नहीं है, ये ब्रेक शू है गाड़ी के,
कौन ब्रेक शू है, पीछे के आगे के,
ये दोनों में एक ही लगते हैं, सिर्फ 1-5 में अलग होते हैं, क्योंकि अगले व्हील में ब्रेक शू बड़े,
क्या बात है भाई,
बड़ा वाला पाना आ गया, ये बताइए
ये क्या चीज है,
ये 8 की टामी है, 8 की टामी,
अच्छा ये सही बोल रहे हैं,
अच्छा जिस जिसको बदल जाए जोर से,
हमें पता ही नहीं है,
जिस जिसको बताए
और बताइए,
ये 8-9 का रिंग पाना
बापू, ये 8-9 सही है सर, ये 8-9 बोल रहे हैं, जरा देखना
ये 8-9, ये हो गया 8 लिखा हुआ है
बापू, 9 उस तरफ देखा होगा वो
नहीं, दोनों
एक तरफ 8 एक तरफ, तो 8 होता दूसरी तरफ 9 होगा ना मेरे आका,
हाँ ठीक है 8-9 माशाल्लाह माशाल्लाह,
ये 11 का 10-11 का फिक्स पाना है, 11 इस तरफ लिखा हुआ है,
11 इस तरफ
बाबू, इन्होंने ये भी आपको बता दिया कि 11 कहाँ लिखा हुआ,
हाँ जी माशाल्लाह,
ये समझ पड़ गया,
बड़ा आला तूफान, बड़ा आला तूफान हो जाए,
सैयद साहब को उलझन नहीं होनी चाहिए, सैयद साहब की उलझन दूर कर दी इन्होंने,
ये बड़ा स्क्रू पाना है,
ये बड़ा स्क्रू पाना है,
और ये है ब्रेक और क्लच के लीवर,
क्योंकि जो हमारे वैसे टूटे हुए होते हैं और अभी पकड़ पकड़ के चला रहे होते हैं,
पिछला ब्रेक तो पेंडल से लगता है लेकिन अगला हाथ से ही लगता है, तो यह है क्लच लीवर
माशाल्लाह, चलें या कुछ सही है साहब आपके,
ये वाला ये पेश कर, ये टेस्टर,
हाँ टेस्टर है, तो
टेस्टर नहीं है बाबू, टेस्टर
है,
अच्छा ये मालूम है किसी को, ये दिखाइए भाई, पहले दिख रहे हैं आप नादिन, दिख रहा है ये मालूम है किसी को,
ये बताएंगे ना,
ये बता देंगे,
9 इनकी है
भाई, ये बताइए,
ये है टेपिट की चाबी,
टेपिट ये कहाँ लगती है, क्या है इससे,
ये बाइक का हेड होता है, कार्बोरेटर जहाँ लगती
है जी,
वहाँ टेपिट का एक 17 के टामी से 4 की टामी से ढक्कन खोलता है छोटा सा,
अच्छा
फिर ये टेपिट का पाना लगता है, उसके 9 रिंग पाने के अंदर फिट होता है,
हाय 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 हाय, अरे भाई इनको तोहफा तो दो पहले, तो फिर बाद में करते कुछ,
तोहफे तोहफे देंगे,
अच्छा तोहफे देंगे, ये मिसवाक आप तोहफे मिले एक, ये इत्र तोहफे मिले दो, ये तस्बीह काउंटर ये लें 3, और ये सौगाते मदीना लें 4, और इन्हें बाबू वो धागे भी दे देना, मुबारक धागे दे दें माशाल्लाह, दे यार ये तो माशाल्लाह, ये गिलाफे काबा के धागे हैं माशाल्लाह, इतने अच्छा, अब ये आपके सामने ये प्रोफेशन है, इन्होंने बाकायदा एक प्रोफेशन इख्तियार किया, और मैं नहीं कहता कि ये किसी को पता नहीं होता होगा, यकीनन जो इसका काम करते हैं इन्हें पता होता है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं कि इनको पता है, बात ये है कि इनको ये कब से आपकी आंखों का मसला है,
ये बचपन से आंखों का मसला था, लेकिन कम नजर आता था, लेकिन 2012 में बिल्कुल आंखें रोशनी खत्म,
उसके बाद फिर इस लाइन की तरफ आया,
नहीं नहीं
पहले
काम तो मैंने 2008 में सीखना शुरू किया था, वो हमारे मोहल्ले में एक उस्ताद आए थे,
2008 में इन्होंने काम सीखना शुरू किया, 2012 में इनके प्रॉब्लम शुरू हुए, काम इन्होंने कंटिन्यू किया, और आज आपके सामने है कि ये बगैर देखे ये ना सिर्फ ये चीजें दिखा देते हैं, बल्कि ये पूरा एक मैकेनिक मोटरसाइकिल मैकेनिक जिसको आप कहते हैं काम कर लेते हैं, अगर ये काम अगर हम सब देखिए ये होता है कि हम आर महसूस करते हैं कामों को करने में, इसके हलाल कमाना है, और इसके हलाल कमाने में बंदे को आर महसूस नहीं करनी चाहिए, लोग शर्म और अजीब व गरीब किस्म का उनका माहौल होता है, अरे आप सोचिए कि लोग हराम कमाने में नहीं शर्माते, हराम कमाने में नहीं घबराते, हलाल कमाने में क्या घबराना, हलाल कमाने में क्या शर्माना, कि हलाल कमाने वाले के तो अल्लाह ताला दर्जे भी बुलंद करता है, हलाल कमाने वालों के अल्लाह गुनाह माफ़ फरमाता है, हलाल कमाने वालों को तो खूब को बरकत अता फरमाता है, तो हमने आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारा यूँ समझिए कि एक चीज़ पेश की है, और इनका एक बैकग्राउंड भी बताया, वजह आप समझ सकते हैं जो मैंने शुरू में बयान कर दी कि जो बेरोज़गारी का रोना रोते हैं असल बेरोज़गारी नहीं है, आपको रोज़गार हासिल करने शायद नहीं आता, याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क हलाल तैयब आसान अता फरमाए, खुददारी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, शाबाश शाबाश,
तुझको मिल जाएगा जो किस्मत में, तुझको मिल जाएगा
जो किस्मत में
माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप लोगों की जानिब आ रहे हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह। जिसको सवाल का जवाब आए वो हाथ खड़ा करें। चलिए बताइए, आसान सवाल है, कौन से महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई? महीना बताना है, आसान सवाल, कौन से महीने में विलादत हुई? जी खड़े हो जाइए। माह रबीउल अव्वल।
जवाब दुरुस्त है,
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत। चले एक और सवाल, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहां नाजिल हुई? माशाल्लाह, जिसको जवाब आ रहा है हाथ खड़ा कीजिए। जवाब
गारे हिरा में। जवाब दुरुस्त हो गया।
चले जी, ये बताइए किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरिश्ते भी हया फरमाते थे?
हाय हाय,
वो कौन से सहाबी है, नाम बताना है, जिनसे फरिश्ते भी हया फरमाते हैं? जी
मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह
माशाल्लाह।
बेदाने उस्मान गनी
जारी रहेगा,
बेदाने उस्मान गनी
जारी रहेगा,
बेदाने उस्मान गनी
जारी रहेगा।
शान है मेरे आका उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
अच्छा, कुछ बच्चियां भी हैं, बच्चियों से भी कुछ सुन लेते हैं। जी बच्चियों तैयार हैं? लेकर आइए भाई माइक देते, आप खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका?
हुरैन अतारिया।
क्या सुनाएंगी आप?
उर्फे ताजी
सुनाएंगे, सुनाइए।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको सुनाऊंगी उर्फे ताजी। अली से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह, ता से तस्बी, सा से सवाब, जीम से जन्नत, हा से हज, ख्वा से खाने का बता, से दुआ, जा से जिलहज, वा से रहमत, जा से जकात, सीन से सन्नत, शीन से शवाल, स्वा से सदका, दुआ से रईस, दुआ से तहारत, तहारत, दुआ से दुआ, आइन से इबादत, दुआइन से वरीरा, फा से फजा, कोफ से कुरान, काफ से किताब, नाम से लुकान, मीम से मदीना, नून से नमाज, वाव से वजू, हा से हजा, स्वदिया से यासीन। जज़ाकअल्लाहु खैरा।
माशाल्लाह माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत
सीधा से सीधा, माशाल्लाह जबरदस्त,
बहुत प्यारा, माशाल्लाह, माशाल्लाह कहे, माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह। और क्या सुनाएंगी बच्ची आप? राजी नाम?
अरीबा।
क्या सुनाएंगी?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
वबरकातुहु।
मैं आपको नात सुनाऊंगी। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, कभी तो गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना
हम भी देखेंगे।
छोटी छोटी इनसे भी सुन लें। जी आप बाजी क्या सुनाएंगी? नाम क्या आपका?
सबीरा।
जी सुना दें।
पहला कलमा तैया तैयम्मा ने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह, जल्दी से खड़ी हो जाइए।
الحمد لله الذي أطعمنا وسخانا وجعلنا مسلمين.
ما شاء الله ما شاء الله.
کیا بات ہے کیا بات. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.
آمین. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ.
ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
روشنی 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 روشنی.